कभी छाँव बन कर लहरों में, कभी नाव बन कर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ।
और आप सब की तरफ से भाई साहब का बहुत 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 दिल से शुक्रिया है, अभिवादन है। जो हमारा आज का विषय है, प्रकृति जीत की स्थिति द्वारा हम प्रकृति के तत्वों की सेवा, उस पर अपने बड़े अच्छे प्रैक्टिकल अनुभवों से हम सभी को अनुभव कराएंगे और प्रैक्टिकल हम सभी भी उसका स्वरूप बन करके ऐसे ही प्रकृति के तत्वों को सकाश दे करके अभी भी उसको अपनी दासी के रूप में महसूस करते हुए भविष्य राजधानी का अनुभव करेंगे। ऐसे भाई साहब अभी हमको अपने अनुभवों से अनुभवी बनाएंगे। आदरणीय निर्भय भाई, ओम शांति।
थैंक यू। ओम शांति। तो शारदा बहन को बहुत बहुत थैंक्स है जो आमंत्रित करके मेरी हिम्मत बढ़ाई और इधर आने के बाद, हॉल के अंदर आने के बाद, आप सब भाई बहनों को देख करके, विशेष गुजरात के भाई बहने, साथ में दिल्ली और आगरा के भाई बहने व अन्य स्थानों से आए हुए सभी भाई बहने, हालांकि विदेश के भाई बहने तो ऊपर ज्ञान सरोवर में हैं, तो सभी को देख करके मन बड़ा खुश हो रहा है कि हमारा कितना बड़ा ईश्वरी परिवार है। लौकिक नहीं है, अलौकिक है। और आज सारे ही ईश्वरी परिवार का क्या कहूं, अलौकिक जन्मदिन है, बाप का भी और बच्चों का भी। तो सभी को अपने अलौकिक जन्मदिन की दिल की दुआएं और बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे शुभ दिन पर आप सभी भाई और बहनें अपने प्यारे मधुवन में आए हैं, अपने प्यारे शांति वन में आए हैं, तो आप कितने खुशकिस्मत हैं इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाबा के बच्चे तो देश विदेश में बहुत हैं, गिनती के हिसाब से 10 लाख से ऊपर हैं, लेकिन उनमें से आज बाबा के सन्मुख मिलने वाले ऐसे शुभ दिन पर जो मधुबन पहुंच गए, तो कितने खुशकिस्मत हैं, कितनी ऊंची आपकी तकदीर है। अभी शारदा बहन ने जो बात कही, तो मैं सोच रहा था कि किस तरह से आपके सामने इस विषय को लूं। बाबा को देखते थे, साकार बाबा को, तो बाबा खास स्वयं प्रकृति पर विजयी हो, और फिर कहते थे प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देना है। विशेष अमृत वेले बाबा इस बात का ध्यान रखते कि प्रकृति को सकाश दें तो प्रकृति का पूरा सहयोग मिलेगा, आज के युग में क्या हुआ है, प्रकृति को उसको बहुत बहुत तंग किया है हम सब ने। मैं हम सब कह रहा हूं, चाहे वो साइंसदानों ने किया हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया हो, और चाहे और भी कई हैं करने वाले जिन्होंने जंगल काटे हों, और साथ साथ में कई ऐसी जगहें जो पहले जमाने से पानी के कलेक्शन के लिए या कुछ बनी हुई थी उनको भी खत्म कर दिया है, उनके ऊपर मकान बना दिए हैं, और उसकी रिजल्ट क्या होती है, प्रकृति फिर अपना रूप दिखाती है, वो रिवॉल्ट करती है। प्रकृति के प्रकोप तो प्रकोप सभी जानते हैं क्या क्या हो रहे हैं। 2002 में भूकंप इतना जोरदार आया, गुजरात वाले सब अनुभवी हैं उस बात के, अभी तक उसका असर चल रहा है। उसके बाद देश विदेश में भूकंप तो आते ही रहते हैं, और आजकल भूकंप की जो शक्ति है वो 7 पॉइंट से भी ऊपर जा रही है। पहले मानते थे कि 6 पॉइंट तक जाएगी तो बहुत खतरनाक है, आजकल 7, 8, 9 तक भी चली गई है। कल परसों पेपर में था, इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया और उससे सुनामी के आने का डर। फिर आपको पता है कि सुनामी भी जब आया था तो कितनी उस समय आम पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, कितने उसमें बह गए थे, कितनों ने जान गंवाई, और फिर उनको जो बच गए उनको फिर संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इस तरह से प्रकृति का प्रकोप जो है वो हम सब जानते हैं। हमारे भारत देश में भी, सिर्फ और जगह नहीं लेकिन भारत देश में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकृति का ऐसा रूप देखने में आता है। महाराष्ट्र के भाई बहनों को अच्छा अनुभव होता है जब वहां बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती है तो जो खेती करने वाले हैं वो खेती उनकी नहीं होती है, और उनके ऊपर कोई ना कोई उन्होंने कर्ज लिए होते हैं, वो कर्ज वापस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, फिर नहीं सहन कर सकते तो अपनी जान ही दे देते हैं। एक महीने के अंदर आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर 200 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसी तरह से स्वयं सुइसाइड किया उन्होंने, आपघात। तो ये ऐसी ऐसी बातें जब प्रकृति की चारों तरफ की सुनते हैं, और फिर उसके साथ में मैन मेड बहुत सारी बातें हैं, आप देखेंगे टर्की में क्या हो रहा है, इसी तरह से मिडल ईस्ट के और देशों में क्या हो रहा है, और उसके फलस्वरूप कितने शरणार्थी बन करके एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, यूरोप के अंदर जा करके बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पहले वेलकम भी करते हैं, फिर संख्या बहुत होने लगती है तो फिर ब्लॉक कर देते हैं, भाई और नहीं आने चाहिए, क्योंकि सबको संभालना भी तो मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी बातें जो देखते हैं भारत के अंदर भी है, विदेशों में भी है। छोटी छोटी बातों पर भारत में आप जानते हो क्या क्या हो जाता है, गुजरात में भी हलचल हो जाती है। हाँ, कभी आप सोचते हैं कि इस तरह से अपने ही भाई बहने, मैं उनको अपने ही भाई बहने कहता हूं, अपने ही भाई बहने छोटी सी एक डिमांड लेकर के और इतना हंगामा करते हैं, इतना एजिटेशन करते हैं, और फिर उससे पब्लिक को बहुत बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो ऐसे ऐसे जो बातें हैं इन सब को योग बल से ठीक करना है। योग बल गाया हुआ है तो योग बल से एक तो हम अपने आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, साफ बनाते हैं, जिसको कहते हैं पावन बनाते हैं, और योग बल से ही फिर हम प्रकृति पर जीत पाते हैं। प्रकृति हमें तंग नहीं करती, फिर प्रकृति साथ देने लगती है, क्योंकि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे। हाँ, जैसे छोटे स्केल पर भी अपने अपने घर के छत पर या अपने अपने घर के आसपास कहीं पक्षियों के लिए, छोटे छोटे पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करते हैं, दाने का प्रबंध करते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रकृति के कई पहलू हैं, उनके लिए अगर हम कुछ थोड़ा बहुत योगदान देते हैं तो उसका फल मिलता है। प्रकृति हमें साथ देती है, प्रकृति हमें तंग नहीं करती है। और मैं यहाँ शांतिवन में रहता हूँ तो शांतिवन में रहने वालों के लिए भी मैंने देखा, दूसरी तरफ कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं आंधी आ रही है, सब कुछ है। इधर गुजरात में भी ऐसे हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, लेकिन बाबा ने हम लोगों को यहाँ ऐसी जगह बिठाया है जहाँ शांति है। शांति वन की शांति सिर्फ नहीं है, लेकिन इस एरिया में ही शांति है। और ये नेचुरल है कि जिस जगह पर इतना अनेक भाई बहने आकर के विशेष मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में अपने आप को उस स्वरूप में ले जाते हैं जो बाप समान स्वरूप है, शांति के सागर के साथ मन लगा के, शांति के क्या कहें, लाइट हाउस बन जाते हैं। तो ऐसे भाई बहनों के संगठित मेडिटेशन के फल स्वरूप ये जो वाइब्रेशन है ये भी प्रकृति को अच्छा बनाने में मदद करता है। शांति वन ऐसे ही नहीं सेफ है, इसका सेफ्टी का एक ही कारण है कि यहां पर लगातार सवेरे, दिन में, शाम को विशेष जो भी भाई बहने होते हैं वो मेडिटेशन का बड़ा ध्यान रखते हैं, बाबा की याद, परमात्मा पिता की याद, और उसकी याद के साथ शुभ संकल्प रखते हैं कि हम बाबा के साथ, जैसे बाबा सारे विश्व का कल्याणकारी है, हम भी बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी बने, मास्टर विश्व कल्याणकारी बने, जिससे कि हम अपने आप को भी श्रेष्ठ बनाएं, अपने संस्कारों को भी श्रेष्ठ बनाएं, अपनी प्रकृति को भी अच्छी तरह से सेफ रखें, और उसके साथ साथ हमारे भाई, हमारी बहनें सारे विश्व के अंदर, उनको भी इसका सकाश पहुंचे, वो भी अपने आप को पहचाने, वो भी अपने असली स्वरूप में आ जाएं, और साथ साथ में जब अपने स्वरूप में आएंगे, अपने बाबा के साथ, परमात्मा के साथ अपने संबंध को जानेंगे अच्छी तरह से, और उसके फल स्वरूप ये महसूस करेंगे कि विश्व के सभी भाई बहने, चाहे कोई भी हैं, किस भी देश में हैं, किस भी धर्म में हैं, लेकिन वो सभी परमात्मा पिता के बच्चे हैं, वो हमारे बाप के बच्चे हैं, मैं तो सीधा ही कहता हूं हमारे बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चों के लिए हम विशेष योगदान देते हैं। क्या योगदान देते हैं? एक तो पहली बात है अपने मन में नेगेटिव संकल्प जो होते हैं उनको पूर्ण त्याग करते हैं, उनसे हमको कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। तो नेगेटिविटी का त्याग करना, हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्यों? उसके गुलाम हम 63 जन्म से बने हुए हैं, तो बहुत समय से कोई गुलाम रहता है, गुलामी का संस्कार बन जाता है, तो फिर उससे बाहर आना और अपनी रॉयल संस्कारों को इमर्ज करना, हिम्मत चाहिए उसके लिए। ऐसी हिम्मत अपने अंदर ला करके पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को अलविदा करना पड़ता है, छुट्टी देनी पड़ती है कि आपके मेरे पास होने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। अगर आप लोगों को शायद याद हो, साकार ब्रह्मा बाबा की एक बात है, शुरू शुरू में 1936 की बात है, ये यज्ञ की स्थापना उसके बाद हुई है, लेकिन बाबा अपनी रोज की डायरी लिखते थे। तो बाबा की एक डायरी है, उसमें बाबा की और साथ में अपने शरीर के साथ जैसे बात कर रहे हो, मन के साथ बात कर रहे हो, और उसमें क्या बात थी? बाबा अपने मन को कहता है, हे मन वजीर, सुनो, तुमने मुझे बहुत हैरान किया है। मैंने एक राजा को देखा है, उनका वजीर उनके हुक्म के बिना कोई काम नहीं करता है, और आप मुझे बहुत भटकाते हो। तो मन वजीर क्या जवाब देता है? राजन, मैंने जो कुछ भी किया आपके आनंद के लिए किया, आपके सुख के लिए किया। फिर बाबा उनको कहता है, नहीं, वो राजा जो है, वो शिव बाबा के लिए संबोधित करते हैं, वो राजा जो है उनका वजीर बिना उनके हुक्म के कोई काम नहीं करता है, और तुम बिना हुक्म के अपने आप ऐसे काम कर देते हो मेरे नाम पर, जो मुझे फिर बाद में बहुत हैरानी होती है, इसलिए आज से तुम मेरी आज्ञा पर चलो। इस तरह की डायलॉग बाबा की डायरी में है, जो हमने खुद पढ़ी है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बात एक उदाहरण के रूप पर सिखाई कि हम अपने शरीर के, अपने मन बुद्धि संस्कारों के राजा हैं, तो राजा बनकर के जिए, गुलाम बनकर के नहीं जिए। तो हम आत्माएं हैं, बाबा ने बहुत प्यार से इस बात को समझाया है, आत्मा अनादि है, अविनाशी है, और सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और साथ साथ सबसे बड़ी बात है जो दुनिया के अंदर लोग जिस बात से भयभीत होते हैं, कौन सी बात है? शरीर को कुछ होता है ना तो बड़ा डर लगने लगता है, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर अपने लौकिक रिश्तेदार भी उसमें बहुत उलझन में आ जाते हैं, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी तरह से पक्का कराया कि आप आत्मा अनादि हो, अविनाशी हो। शरीर लेना और शरीर छोड़ना ये तो कॉमन बात है, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों में मिल जाता है जा करके, लेकिन आत्मा अपना पार्ट बजा करके फिर दूसरे पार्ट में चली जाती। वो सोचना है कि मुझे इस शरीर के द्वारा, जो अभी प्रकृति मेरा साथ दे रही है, इसके द्वारा मुझे किस तरह का काम करना है, ऐसा कर्तव्य करें जो भविष्य में इससे भी अच्छा हमें साधन मिले, इससे भी अच्छा शरीर मिले। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे ये तुम्हारा 84वां जन्म है, इस कल्प के अंदर अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में पहली बात तो खुशखबरी की यही है कि सारे कल्प में भले हम देवता थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, फिर आके शूद्र बने, उस सारे कल्प में शिव बाबा का साथ नहीं मिलता है। उनको याद जरूर करते आए, पूजा जरूर करते आए, बेलपत्ते चढ़ाते आए और भी कई कुछ चढ़ाते रहे उनके मंदिर में उनके ऊपर, लेकिन बाबा का जो सन्मुख मिलन है वो नहीं होता है। तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर ऐसे शुभ समय पर उनको कहते हैं ना स्वयंभू, तो वो कहते हैं मेरा किसी के बुलाने से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अपने समय पर स्वयं अवतरित हुआ हूं और अवतरित होकर के फिर से हमें क्या करते हैं, ज्ञान और योग के बल से माया जीत बनाते हैं। जब तक माया जीत नहीं बनेंगे तो प्रकृति जीत कैसे बनेंगे? प्रकृति माया नहीं है, माया पांच विकार हैं। वो पांच विकारों के वश जो कर्म किए उसके फलस्वरूप प्रकृति को बहुत डिस्टर्ब कर दिया हमने। तो आप सोचिए, अगर किसी को आज और कुछ नहीं, जीव जंतुओं को भी अगर कोई थोड़ा तंग करता है तो वो रिएक्ट करते हैं। कभी सांप के पूछ के ऊपर पांव आ जाए तो फट काट देता है। इसी तरह से और भी देखा है, कौओं को देखा है, अगर उनको थोड़ा किसी ने तंग किया तो वो आकर के सिर को आकर के काटते हैं। ऐसी ऐसी बातें बहुत ऑब्जर्व करने की होती हैं। और वही चीज देखी है, मधुमक्खियां, वैसे सबको डर लगता है उनसे भाई कहीं आकर के काट ना दे, और हम देखते हैं अगर उनके लिए पानी पीने का प्रबंध कर दिया और उनको हम छेड़ते नहीं हैं, बड़े आराम से आप भले क्या भी करो उनके पास, चलो फिरो मौज करो, वो आएंगी अपना पानी पिएंगी चली जाएंगी बस। ऐसी ऐसी बातें जो हैं तो प्रकृति से हमें मिलती हैं कि प्रकृति को अगर हम प्यार करते हैं तो प्रकृति हमें सहयोग देती है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा ना, प्रकृति जीत बनने से पहले माया जीत बनना जरूरी है। वो अपने आप में देखना है कि अभी मेरे अंदर पांच विकारों में से कोई ऐसी बात तो नहीं है जो अभी तक मुझे, जब कोई पांच विकारों में से किसी विकार के वश होकर के कोई कर्म करेगा तो उसकी दिल खाती रहेगी। वचन में आ गई तो फिर पश्चाताप होगा, मन में आ गई तो जो अति इंद्रिय सुख है ब्राह्मणों का इस संगम युग पर, जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, वो अति इंद्रिय सुख देखने में नहीं आएगा। जो चेहरे की रौनक होती है, मुस्कान होती है, वो चली जाएगी। कभी आप अपने रोजमर्रा के जीवन से देखो, बहुत अच्छे मजे में खुश हैं, बाबा की याद का आनंद है, और चलते चलते कोई ऐसा संकल्प मन में नेगेटिव आ गया, उस समय अपने चेहरे को देखो, एकदम सूखा हुआ चेहरा हो जाएगा। उसका इफेक्ट इमीडिएट है। इसलिए बाबा ने बार 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 एक बात कही है कि जितना हो सके निरंतर शिव बाबा के साथ मन लगाओ, क्योंकि शिव बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। तो जितना उनके साथ मन लगाएंगे, मन से उनके संग में रहेंगे, जितना उनका संग करेंगे, क्या होगा उसका रिजल्ट, रंग किस पे चढ़ेगा? रंग किस पे चढ़ेगा? जवाब दो ना। जो याद करेंगे रंग उन पे ही चढ़ेगा ना। तो इसलिए उसके रंग में रंग जाएं। कौन सा रंग है उनका? कौन सा रंग है? है ख्याल में गोल्डन है हाँ, या गोल्डन व्हाइट है? कौन सा रंग है हाँ? व्हाइट है, प्योर व्हाइट है, हीरे की तरह है। चलो जो भी समझो, लेकिन एक खास बात यही है कि ये अपने मन में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पांच विकारों के वश अगर मन होगा तो आप अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। टेम्परेरी हंसना बैलना कर लेंगे, लेकिन जो एक योगी जीवन की देन है, योगी जीवन के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ बात मानी जाती है कि जब योग युक्त होते हैं, परमात्मा पिता के साथ मन लगा होता है, तो उसमें इंद्रियों के सुख से परे अति इंद्रिय सुख, जिसको अंग्रेजी में क्या शब्द देते हैं, हैप्पीनेस सिर्फ नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है, बोलेगा कोई जी? अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता दूंगा, पर उसको जो अभी याद आ भी गया, नहीं आता क्या, नहीं याद आता तो आ गया, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुपर सेंशुअस जॉय, सुपर सेंशुअस अति इंद्रिय सुख। तो उसमें मन लग जाए और उस सुख में रहे, तो आप बताइए आपका कौन सा वाइब्रेशन जाएगा बाहर? अति इंद्रिय सुख वाला वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगा, और वो वाइब्रेशन प्रकृति को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। अकेले आप हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको देख करके दूसरे भी सोचेंगे, वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस तरह से एक तो पहली बात है, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में भी तो इसकी जरूरत रहती है ना, सभी एक साथ ज्ञान में नहीं अगर आते तो थोड़ा सा वहां भी आवश्यकता रहती है। और फिर इसके साथ में विश्व में जो इतनी समस्याएं हैं, आप जानते हैं कितनी कॉन्फ्रेंस होती हैं, विश्व शांति सम्मेलन होते हैं, बहुत जो अच्छे शुभ चिंतक हैं उनके मन में तो यही आता है कि जल्दी से जल्दी विश्व में शांति हो जाए, और वो विश्व शांति के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन उसमें मेन बात जो आती है कि चाहे हम कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं, चाहे सुनने वाले हैं, अगर आप हम सभी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं, अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाएं, जो हम सब का स्वधर्म है ही शांति, क्या कहते हैं, सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, एक दो को देखते ही ओम शांति ओम शांति, दादी जानकी कहती है तीन बार बोलो ओम शांति, मैं शांत स्वरूप हूं, ओम शांति आप शांत स्वरूप हो, ओम शांति प्रकृति को ये दान दो। तो ये कोई नई बात नहीं है, भारत के जितनी हमारी भक्ति मार्ग की भी किताबें हैं या भक्ति मार्ग की भी जो प्रथा चलती आती है उसमें भी ओम ओम का उच्चारण और उसके साथ में ओम शांति, ओम के उच्चारण से मन शांत होता है, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा नहीं, इससे भी आगे जाओ। भक्ति में शब्दों का इस्तेमाल होता है, आवाज करनी पड़ती है। मन ही मन में बाबा के साथ मन लगाओ। क्या शब्द दिए उसके लिए याद है? मन मना भाव, मन मेरे साथ लगाओ। तो मन बाबा के साथ लगाएंगे तो मन कैसा बन जाएगा? वैसे लौकिक रीत से कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है? जब हम बाबा को याद करते हैं तो मन को कौन सा भोजन दे रहे हैं? सबसे पावरफुल भोजन है लाइट और माइट। शिव बाबा की लाइट और माइट जो है वो हम आत्माएं अपने मन को दे रहे हैं। उस लाइट और माइट के फलस्वरूप आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है, इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि वो फिर अपने शक्तिशाली स्वरूप से प्रकृति को भी पावन बना देती है। बाबा की साकार मुरली में बीच बीच में कभी ऐसी रेफरेंस आती है, बच्चे अमृत वेले अच्छी तरह से बाबा की याद में बैठो तो आपके वाइब्रेशन से पांचों तत्वों को पवित्र बना देंगे। सारे विश्व के लिए बाबा बोलता है, कोई एक जगह के लिए नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर एक बाबा का बच्चा, चाहे कहां भी रहते हो, घर में रहते हो, सेंटर पे रहते हो, हर एक बाबा का बच्चा शांति, शांति और प्रेम का लाइट हाउस है। हर एक लाइट हाउस है। आप सभी अपने आप को थोड़ा सा रिमाइंड कराओ कि हम शांति और शक्ति के, पवित्रता के लाइट हाउस हैं। और लाइट हाउस क्या काम करता है? दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। तो ये बात खास कि प्रकृति के पांच तत्वों को हम पावन भी बनाएं और पावन के साथ साथ उनको अपना सहयोगी भी बनाएं, क्योंकि इस समय की हमारी भावनाएं, इस समय का हमारा पुरुषार्थ पांच तत्वों को इस तरह से श्रेष्ठ बना देता है कि वो भी फिर आपको क्या करते हैं। हालांकि निशानियां तो आज दिन तक है, इन दिनों में गुजरात साइड में भी, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, दूसरी महाराष्ट्र में भी, सब जगह में कौन से फल का पेड़ इस समय लदा हुआ मिलेगा आपको? हमारे पास छोटे छोटे हैं अभी, आम का पेड़। तो आम का पेड़ क्या करता है? देखने में आता है ना, एक तो छतरी की तरह आपको देखने में आएगा, धूप से बचाता है, और दूसरा जब आम निकलेगा वो आम खाएंगे तो खाने वालों को उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? और आम खुद के लिए कुछ नहीं करता है, देता सब है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। तो वो आम का पेड़ हमारे लिए एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि हम भी इस तरह से अपने जीवन को बनाएं कि सबके लिए, संसार के लिए, पांच तत्वों के लिए हम निमित्त बन जाएं, निमित्त बन जाएं। ऐसी भावना रखने से उसमें अपने भाई बहनों की भी संभाल होती है और उसके साथ साथ संपर्क में आने वालों की भी संभाल होती है और फिर उसके साथ प्रकृति की भी संभाल होती है। आजकल सब जानते हैं हमारे एक विंग बनी हुई है, ग्राम विकास विंग। ग्राम विकास विंग के द्वारा यौगिक खेती वो काफी मशहूर होती जा रही है। हालांकि नई चीज नहीं है, मैं बता देता हूं, पहले अपने सभी गांवों में इसी तरह से खेती होती थी। वो लोग जाने अनजाने जब खेती करते थे तो भगवान को याद करते थे, अपने अपने हिसाब से खेती भी करते रहेंगे और कुछ ना कुछ उच्चारण भी करते रहेंगे। क्योंकि मुझे ये याद है, अपने गांव में खेती करते थे तो साथ में गुरबाणी का जाप करते थे पंजाब के अंदर। तो इस तरह से कोई कौन सा पाठ करता है, कोई कौन सा पाठ करता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल देखा, कर रहे हैं खेती लेकिन वो जो शब्द उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं साथ साथ, उससे सारा वायुमंडल कितना अच्छा बन जाता। और उस समय की खेती इतनी अच्छी होती रही है, बहुत अच्छी खेती। और अभी भी ऐसा सुनते हैं कि यौगिक खेती जो है, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है लेकिन उसके फलस्वरूप जो अनाज मिलता है, जो सब्जियां मिलती हैं, वो इतनी अच्छी मिलती हैं, इतनी क्वांटिटी उसकी अच्छी मिलती है, इतना उसका वो पौष्टिक लाभ मिलता है। तो योग के द्वारा, योग के प्रयोग से ये प्रैक्टिकल अभी इस समय देखा गया है। और एक दो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटीज ने खास उस चीज को जानने के लिए उस बात को अपना के देखा कि सचमुच इसमें बहुत बल भरा हुआ है। तो प्रकृति को भी हम मदद भी करते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, और प्रकृति फिर हमें सुख देती है। इसलिए जब सतयुग में होंगे, गोल्डन एज में होंगे, तो उस समय क्या कहते हैं, प्रकृति देवताओं की दासी है, दासी है। बड़ी बातें अच्छी अच्छी सुनते थे बचपन में कि देवताएं संकल्प करते थे बारिश आ जाती थी, देवताएं संकल्प करते थे तो फल अच्छे अच्छे उनके सामने आ जाते थे। अब अपने आप तो नहीं आएंगे, आपको बगीचे में जाना पड़ेगा, फल तोड़ना भी पड़ेगा, ऐसे ही शुभी रस मुख में नहीं आ जाएगा। तो पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है, और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ वर्तमान समय का जो है वो है ही कि अपने योग बल से, बाबा के साथ मन लगा के योग बल से स्वयं को भी पावन बनाए, अपने वातावरण को भी पावन बनाए, अपने नजदीक जितने भाई बहनें रहते हैं परिवार में उनको भी पावन बनने का रास्ता जरूर बताना है, उनके शुभ चिंतक बनना है, उनके लिए बहुत शुभ भावना रखनी है। कई बार भाई बहनें आते हैं, माताएं आती हैं, कहती हैं हमारे घर में अभी तक वो मानते नहीं हैं। तो मैं सोचता हूं इतनी अच्छी बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इतना ऊंची बातें हैं, अगर उनको ठीक से कोई सुनाए तो जरूर मानेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे। तो आजकल तो देखो ठीक से सुनाने के लिए आपको हमारे करुणा भाई ने बड़ा अच्छा साधन दे दिया है, घर घर में टीवी पहुंच गई है, आपके पास टीवी, तो टीवी के द्वारा रेगुलर सारा दिन गीत संगीत डायलॉग और उसके साथ में ड्रामा, फिर अच्छे अच्छे भाई बहनों के प्रवचन होते हैं सवेरे से लेकर के, जल्दी शुरू हो जाती है और रात तक चलती है। तो उससे वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, उसका असर बहुत भाई बहनों पर हुआ है। हाँ, इस सभा में भी होंगे जो टीवी देख करके ज्ञान में आए हैं, जरा हाथ खड़ा करें, थोड़े थोड़े हैं, लेकिन उसका रिजल्ट देखने में आता है। जो सेंटर पे कभी नहीं आ सकते हैं तबीयत के कारण और कारण, घर बैठे उनको बाबा का सारा ज्ञान मिल जाता है, सब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका समाचार मिल जाता है, समाचार भी होता है, न्यूज भी पढ़ के सुनाते हैं। हफ्ते में पहले दो बार शुरू की, फिर तीन बार, अब पता नहीं कितनी बार है, लेकिन क्योंकि बाबा का ईश्वरी विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, वर्ल्ड वाइड है, उसके बहुत एक्टिविटीज होती हैं, तो अपने ईश्वरी सेवा की एक्टिविटीज को, उसकी न्यूज को देख करके सुन करके बड़ा उमंग आता है कि हम भी और कुछ करें, हम कुछ नया करें, नई बात करें, जिससे अधिक से अधिक भाई बहनों को बाबा का ज्ञान मिले, परिचय मिले और अपनी जीवन में सफल हों, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, शुद्ध बनाएं और योगी जीवन का आनंद लें। तो प्रकृति जीत, कौन बनेंगे प्रकृति जीत? जो बनेंगे हाथ खड़ा करें। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप प्रकृति जीत बनेंगे तो प्रकृति आपको बहुत सुख देगी, और उसके पहले माया जीत भी बनना है। तो माया जीत के लिए क्या चाहिए? विशेष योग बल चाहिए। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो कई स्टेजेस होती हैं। एक रू रूहान की स्टेज है, बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद आत्मा में जितना बल बढ़ना चाहिए वो नहीं होता है। दूसरी और स्टेजेस हैं जिसमें बिल्कुल न्यारे और प्यारे बन जाते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा है, पर दूसरों के लिए कल्याण की भावना से जब तक योग नहीं करेंगे तो उन तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए इससे आगे की स्टेज जो है लाइट और माइट स्वरूप की, उसमें आएंगे तो आप लाइट भी रहेंगे और आपके अंदर बाबा की शक्ति वो भी अच्छी तरह से भरेगी, और उसके फलस्वरूप सेवा में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी को भी आप दृष्टि देंगे, थोड़ा सा ज्ञान देंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और फिर आज के टॉपिक के अनुसार विशेष रूप से बाबा के साथ ज्ञान सूर्य के साथ, आप जानते हैं सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की जो शक्ति है वो प्रकृति को कितना साथ देती है। अगर सूर्य कभी बादलों के कारण छिप जाता है तो आप देखेंगे नीचे जो फसल है उस पे असर होता है, सूखने लगती है, ढीली हो जाती है। तो सूर्य के समान थोड़ा ये अपने अंदर संकल्प शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। सूर्य समान ज्ञान सूर्य के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके जब आप बाबा की याद में रहेंगे, उससे इस शरीर के पांच तत्वों को भी मिलेगी ताकत, और उसके फलस्वरूप अपने सारे वायुमंडल में जहां भी रहते हैं वहां भी ताकत मिलेगी। और बाबा कहता है बच्चे, आप थोड़ा टाइम भी बैठ करके बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो उसका सारे वायुमंडल पर, सारे ब्रह्मांड पर असर पड़ता है। तो आप सोचिए हमारा कितना अहम रोल है। आज के दिन शिवरात्रि के दिन शिव बाबा को तो खास भक्त भी पूजते हैं, बेल पत्तर चढ़ाते हैं, मिठाइयां भी चढ़ाते हैं, हालांकि बाबा खाता नहीं है, लेकिन हम बच्चे भी बाबा को ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ऐसे शुभ दिन पर एक संकल्प अपने मन में पक्का करें कि हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएं, बाप समान बनाएं, ताकि हमारे पर कंपन जो है वो इस शरीर को भी साथ दें और इसके साथ साथ सारे भाई बहनों को भी साथ दें, विश्व के जितने भी हैं, और विशेष रूप से प्रकृति जो आज रिवॉल्ट कर रही है, अगेंस्ट जा रही है मानवता के, प्रकृति भी साथ दे। प्रकृति का साथ मिलेगा तो फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा होगा। सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है। तो आज विशेष इस टॉपिक को इसीलिए लिया है कि बाबा के अवतरण के दिवस पर विशेष ये वरदान बाबा से प्राप्त करें, हम भी पावन बने, प्रकृति को भी पावन बनाए। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम के लिए बैठेंगे बाबा की याद में। बैठना है ना, जल्दी तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी है, तो 8 मिनट है अभी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, 10 मिनट बैठेंगे। और मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सब एक तो अपने स्थान पर सीधा बैठे और अटेंशन से बैठे, कोई झुटका नहीं खाए, और खास जो अभी आपको सुनाई बात, बीच की स्टेजेस से सीधा ऊपर चलो कि हम आत्माएं परमधाम निवासी हैं, और परमधाम में जब आत्मा निवास करती है तो अपने फुल स्वरूप में है, 100% उस समय बाप समान है वो। तो अभी हम उस स्वरूप में बाबा के साथ बैठे और वहां से अपने पर कंपन इस सृष्टि को दें, 5 तत्वों को दें और सर्व भाई बहनों को दें, जो करोड़ों की संख्या में चारों तरफ हैं उन सबको भी दें, लेकिन पहले सीधा बाबा के साथ जाकर के निवास करें। हम आत्माएं हैं, ज्योति स्वरूप हैं, और ज्योति की दुनिया में जा रहे हैं, और ज्योति स्वरूप बाबा के पास, जो बताया ना वो ज्ञान का सागर भी है और साथ में सूर्य समान शक्ति है उनकी, जिस शक्ति से, ईश्वरी ज्ञान की शक्ति से, इस विश्व की जो भी कोई ऐसी कमियां है उसको दूर कर देते हैं, फिर से इसको सतोप्रधान बना देते हैं, और सतोप्रधान जब बन जाएगी तो सत्यों की शुरुआत हो जाएगी। उसमें बाबा कहता है आप बच्चे भी मेरे राइट हैंड हो। राइट हैंड सबसे श्रेष्ठ कार्य के लिए यूज होता है। तो बाबा ने कहा आप भी मास्टर मैसेंजर हो। शिव बाबा ही मैसेंजर नहीं है जो मैसेज दे रहा है, आप भी मैसेंजर हो। तो मैसेज भी देते रहना है, लेकिन साथ में इस समय मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके सारे विश्व को, 5 तत्वों को, सर्वात्माओं को बाबा की शक्ति देनी है। अपनी शक्ति नहीं देनी है, बाबा के साथ मन लगा के बाबा की शक्ति सब तक पहुंचे, इस भावना से अभी बाबा की याद में बैठना है। ओम शांति। बैठे रहो अच्छी तरह से। और मन में यही सोचो, पहली बात हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मन खुश हो जाता है, सोचते ही खुश हो जाता है। बाबा को सामने रखते हैं, बाबा आपने स्वयं हमें अपना परिचय दिया, आपकी आज्ञा अनुसार हम आपके पास आ गए, मन से आपके साथ हैं। इस ज्योति की दुनिया में हम चेतन आत्माएं, चेतन ज्योति स्वरूप आपके संग में तारों की तरह रिमझिम में बैठे। आप ज्ञान सूर्य, हम आत्माओं को भी अपनी शक्ति दे करके मास्टर ज्ञान सूर्य बना रहे हैं। हम मास्टर सूर्य के स्वरूप में स्थित हो, आपके साथ मन लगाकर सारे विश्व की आत्माओं को, पांच तत्वों को, प्रकृति को अपना योगदान दे रहे हैं। शांति की शक्ति से सर्व आत्माओं तक शांति का वरदान दे रहे हैं। प्रेम की शक्ति से सर्व आत्माओं को लड़ाई झगड़ों से मुक्त कर रहे हैं।
मुक्ति धाम। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें